الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آداب زندگی کتاب کے اندر کچھ میرے پاس چپٹرز چونکہ آگے پیچھے تھے تو پھر ہم انشاءاللہ آپ کی بک کے مطابق کریں گے خوف و حراس کے آداب یہ نکال لیجئے گا خوف و حراس کے آداب میرے خیال یہ اس کے بعد ہی رنج و غم کے دیکھیں خوف و حراس خاص طور پہ ایسے حالات کے اندر جب مسلمانوں کی فیور میں حالات نہ ہوں مسلمانوں کی ایسی جگہ پر بہت زیادہ ان کی ایکسیپٹنس نہ ہو جو کہ غیر مسلم ممالک یا جگہ ہیں ان میں خوف و حراس کے ایک ڈیفرنٹ سرکمسٹانسز حالات ہوتے ہیں جو مسلمان ممالک ہے وہاں پہ ایک ڈیفرنٹ بات ہو جاتی ہے چوروں ڈاکوؤں اور انسلز خوف و حراس تو ایک الگ چیز ہوتی ہے لیکن بعض دفعہ خوف و حراس صرف اس لیے ہوتا ہے کہ آپ مسلمان ہیں اور وہ آپ کے لیے تھریٹ بن جاتا ہے تو خوف و حراس کے ڈیفرنٹ سچویشنز ہو سکتی ہیں اب ان کے اندر انسان کا رویہ کیا ہونا چاہیے جب خوف ہے اور ہم لوگ جو مسلمان خاص طور پہ یہاں پہ رہتے ہیں ہم لوگ اس چیز سے گزرے ہوئے جب ہمارے اوپر خوف و حراس کے 9/11 کے بعد بھی حالات آئے تھے اور اس طرح اور بھی کوئی ایسے حالات ہو جائیں تو خوف و حراس واقعی ہر طرف ہو جاتا ہے تو اس وقت کیا کرنا چاہیے کیا ایک مسلمان کا طریقہ کار ہونا چاہیے خوف کو ہینڈل کرنے کا اعدائے دین کی قتل و غارت گری ظلم اور بربریت اور فتنہ و فساد کی ہیبت ہو یا قدرتی عذابوں کی تباہ کاریوں کا خوف ہو ہر حال میں مومنانہ بصیرت کے ساتھ اس کے اصل اسباب کی کھوج لگائیے اور سطحی تدبیروں پر وقت ضائع کرنے کی بجائے کتاب و سنت کی بتائی ہوئی حقیقی تدبیروں سے اپنی ساری قوتوں کو مرکوز کر دیجئے قرآن پاک میں ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ جو بھی مصائب تم پر آتے ہیں تو وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کا نتیجہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ تو بہت ساری باتوں کو تو ویسے ہی درگزر کر دیتا ہے یعنی انسان کے اوپر اگر کوئی بھی خوف و حراس کے بھی واقعات ہوتے ہیں چاہے وہ کسی قسم کے بھی ہوں چاہے قدرتی آفات آپ کو پتہ ہے ابھی پچھلے دنوں ایک نیوز آئی تھی کہ جب ٹرکی میں دوبارہ زلزلہ آیا تو لوگ اس قدر خوف زدہ تھے کہ وہ رات کو یعنی ایسے گھروں سے نکل کے بھاگے ہیں اور انہوں نے کہا کہ پچھلی دفعہ سے بھی زیادہ ہمیں خوف تھا کیونکہ اب ان کے سامنے وہ حالات آ چکے تھے جو پچھلے زلزلے سے ہوئے تھے وہ کہتے ہیں ہم ساری رات اپنے گھروں میں داخل نہیں ہو سکے ساری رات سو نہیں سکے تو جو خوف و حراس ہوتا ہے وہ کسی قسم کا بھی ہو انسان کے اوپر بہت شدت سے اثر کرتا ہے یعنی اس کا چین اور اس کا آرام سب ختم ہو جاتا ہے جو خوف ہے نا وہ ایسی چیز ہے اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے تو لیکن جو بھی ایسی مصیبتیں بھی آتی ہیں وہ بھی انسانوں کی اپنے ہی ہاتھوں کا نتیجہ ہوتی ہیں اور قرآن پاک ہی اس کا علاج بھی بتاتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ یہ سورہ نور کی آیت ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سب کے سب توبہ کرو سب اے ایمان والو تاکہ تم فلاح پا جاؤ جب لوگوں کو کہا جاتا ہے نا کہ جب بھی کوئی آفت یا اس بلکہ اس سے پہلے بھی انسان کو توبہ کرتے رہنا چاہیے مگر ایسے حالات میں ضرور توبہ استغفار کی طرف آنا چاہیے جب بھی کوئی مصیبت آئے جب ایسے کہا جاتا ہے تو لوگ بعض دفعہ بڑا مذاق اڑاتے ہیں کہ لو ان کو تو بس اس بات کا پڑھاوا ہے حالانکہ یہ نیچرل ڈیزاسٹر ہے یہ تو ایسے ہو گیا یہ تو اس کی وجہ سے ہوا کوئی پلیٹ ہل گئی کوئی فلاح ہو گیا وہ اپنی جگہ الگ لیکن پلیٹوں کو ہلانے والا بھی تو کوئی ذات ہے نا اس کے اوپر ایمان نہیں ہے سونامی لانے والی بھی تو کوئی ذات ہے نا یا خود ہی آ جاتی سونامی بھی خود ہی پلیٹیں ہل جاتی ہیں زلزلے بھی خود ہی آ جاتے ہیں طوفان بھی خود ہی آ جاتے ہیں کیا تو کیا توبہ استغفار کی طرف انسان آئے توبہ کے معنی ہے پلٹنا رجوع کرنا گناہوں کے ہیبت ناک دلدل میں پھنسی ہوئی امت جب اپنے گناہوں پر نادم ہو کر اللہ کی طرف پھر جذبہ بندگی کے ساتھ پلٹتی ہے اور اشکہائے ندامت سے اپنے گناہوں کی گندگی دھو کر پھر اللہ تعالیٰ سے عہد وفا کو استوار کرتی ہے تو اس کیفیت کو قرآن توبہ کے لفظ سے تعبیر کرتا ہے کہ جب آپ پلٹ آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف اور ندامت کے ساتھ پلٹتے ہیں کہ اللہ ہمارے ہی گناہ تھے تو اسی کو توبہ کہتے ہیں اور یہی توبہ و استغفار ہر طرح کے فتنے و فساد اور خوف اور ہیبت سے محفوظ ہونے کا حقیقی علاج ہے اور آپ دیکھیں यूनुस अलैहिस्सलाम ने भी मछली के पेट में तौबा ही की थी, तो अल्लाह ताला ने उनको उस खौफ और उस मुसीबत में से निकाल दिया। आदाए दीन यानी जो दीन के दुश्मन है, उनकी फितना अंगेजी और जुल्मों सितम से घबरा कर बेहिम्मती दिखाने और बेरहमों से रहम की भीख मांगने की जिल्लत से कभी अपनी मिल्ली जिंदगी को दागदार ना कीजिए। कभी ये ना करें कि आप इस खौफ की वजह से कि अल्लाह के दीन के जो दुश्मन है वो अब ये कर देंगे और वो कर देंगे, तो मैं हिजाब भी उतार दूं, मैं अपने नाम भी कोई जॉन रख ले, कोई कुछ रख ले, ताकि हम पहचाने ही ना जाएं, और हम इससे कभी भी आप बच नहीं सकते। ये जो लोग भी ऐसा करते हैं और समझते हैं कि हम वेस्टर्नाइज हो जाएंगे तो हम एक्सेप्टेबल हो जाएंगे, या हम इनके जैसे हो जाएंगे तो पता नहीं ये हमें किस पेडेस्टल पे बिछा देंगे इज्जत के, तो इज्जत सारी की सारी अल्लाह के पास है और रिज्क का मालिक अल्लाह है। ये एक ईमान वाले का यकीन है ना, यही उसका ईमान है और इस पे पुख्ता रहना चाहिए, ना कि चीजें देख के हाय कोई खौफ आया तो सब कुछ अपना ईमान दीन ईमान छोड़ दिया। यानी अच्छे दिनों में तो मैं बड़ी मुसलमान हूँ, जो ही कोई खौफ और मुश्किल का वक्त आया सारा इस्लाम और वो कहाँ गया, खत्म हो गया। और हमने देखा है कि ऐसे हुआ है माजी में। बल्कि इस कमजोरी पर काबू पाने के लिए कमरे हिम्मत बांधिए, जिसकी वजह से आप में बुजदिली पैदा हो रही है और अदाए दीन को आप पर सितम ढाने और आपको हड़प करने की जुर्रत पैदा हो रही है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी दो वजूहात बयान की हैं, दुनिया की मोहब्बत और मौत से नफरत। क्यों इंसान दीन से फिर भागता है? असल में दुनिया की मोहब्बत है ना, और मौत का खौफ है, मर ना जाए। ये अजम कीजिए कि आप ना सिर्फ अपने सीने से बल्कि मिल्लत के सीने से इन रोगों को दूर करके ही दम लेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि मेरी उम्मत पर वो वक्त आने वाला है जब दूसरी कौमें तार लुकमा समझ के तुम पर इस तरह टूट पड़ेंगी जैसे खाने वाले दस्तरखान पर टूटते हैं, जैसे कोई भूखा होता है ना खाने की तरफ टूटता है, इस तरह गैर कौमें तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेंगी। किसी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या उस जमाने में हमारी तादाद इतनी कम होगी कि लोग हमारे ऊपर टूट पड़े, कि हमें निगल लेने के लिए कौमें मुत्तहिद होकर हम पर टूट पड़े? इरशाद फरमाया, नहीं, उस वक्त तुम्हारी तादाद कम नहीं होगी, अलबत्ता तुम सैलाब में बहने वाले तिनकों की तरह बेवजन होगे और तुम्हारे दुश्मनों के दिल से तुम्हारा रोब निकल जाएगा और तुम्हारे दिलों में बुजदिली और पस्त हिम्मती पैदा हो जाएगी। इस पर एक आदमी ने पूछा, या रसूलल्ला, ये बुजदिली क्यों पैदा होगी? फरमाया, इस वजह से कि तुम दुनिया से मोहब्बत करने वाले लोगों के और मौत से नफरत करने लगो। हाँ, नफ्स परस्ती, अय्याशी, औरतों की सरबराही और नाफरमानी से अपने माशरे को पाक कीजिए और अपनी इज्तमाईयत को मजबूत से मजबूत तर बनाकर इज्तमाई कुव्वत के जरिए फितना और फसाद को मिटाने और मिल्लत में शुजात जिंदगी और हौसला पैदा करने की कोशिश कीजिए। यानी आप लोग जुड़ के रहें, जुड़ के रहेंगे तो मजबूत रहेंगे, और जब आपस के अंदर ही नफरतें हैं और अय्याशियों में पड़ गए और ख्वाहिशात के पीछे दौड़ने लगे तो क्या वक़्त रहेगी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जब तुम्हारे हुक्मरान अच्छे लोग हो और तुम्हारे खुशहाल लोग सखी और फयाज हो और तुम्हारे इज्तमाई मामलात बाहमी मशवरों से तय पाते हो, तो यकीनन तुम्हारे लिए जमीन की पुश्त पर जिंदगी जमीन की गोद में मौत से बेहतर है। और जब तुम्हारे उमरा और हुक्मरान बद किरदार लोग हो और तुम्हारे माशरे के मालदार जर परस्त यानी माल से मोहब्बत करने वाले और बखील हो और तुम्हारे मामलात तुम्हारी औरतों के हाथों में हो, तो फिर तुम्हारे लिए जमीन की गोद यानी मौत जमीन की पुश्त यानी जिंदगी से कहीं बेहतर, यानी जमीन के ऊपर रहने से बेहतर है जमीन के नीचे ही चले। क्या हुक्मरान तुम्हारे ऐसे हो कि जो बदकिरदार हो, जब तुम्हारे मालदार लोग बखील हो, कि लोग मर रहे हैं लेकिन मालदारों को अपने माल और उसकी हविस की है, और फिर इस तरह तुम्हारी औरतों के हाथों में तुम्हारे सारे काम हो। हालात कैसे भी लर्जा खेज हो, हक की हिमायत में कभी कोताही ना कीजिए, हक के साथ खड़े हो चाहे हालात कैसे भी हो। हक की हिमायत में जान दे देना इससे कहीं बेहतर है कि आदमी बेदीनी और बेगैरती की जिंदगी गुजारे। याद रखें, दीनी गैरत भी कोई चीज होती है। एक गैरत तो वो है ना जो हमें बहुत आती है, जिस वक्त हमारे खानदान को कोई बुरा कह दे या हमारी जात को कोई बुरा कह दे या हमारे बच्चों को कोई बुरा कह दे, तो फिर तो हमें बड़ी गैरत आती है, हमारी आंखें बाहर आ जाती है, गुस्से से हम लाल पीले हो जाते हैं। एक दीनी गैरत भी होती है। कि मेरी दीनी गैरत ऐसी हो कि मेरे दीन के ऊपर हर्फ ना आए, मेरे दीन के बारे में कोई बात ना कर सके। सख्त से सख्त आजमाइश और शदीद से शदीद खौफ की हालत में भी हक का दामन हरगिज ना छोड़िए। कोई मौत से डराए तो मुस्कुरा दीजिए, और शहादत का मौका है तो शौक और जज्बे के साथ इसका इस्तकबाल कीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, इस्लाम की चक्की गर्दिश में है, तो जिधर कुरान का रुख हो उसी तरफ तुम भी घूम जाओ। होशियार रहो, कुरान और इख्तदार अनकरीब अलग अलग हो जाएंगे। यानी इख्तदार कुछ कहेगा, कुरान कुछ कहेगा। खबरदार, तुम कुरान को ना छोड़ना, आइंदा ऐसे हुक्मरान होंगे जो तुम्हारे बारे में फैसले करेंगे। अगर तुम उनकी इताअत करोगे तो वो तुम्हें सीधे रास्ते से भटका देंगे, और अगर तुम उनकी नाफरमानी करो तो वो तुम्हें मौत के घाट उतार देंगे। यानी इतने लोग पीछे पड़ जाए, जैसे जो होते हैं ना हुक्मरान, जब उनके खिलाफ कोई बात या वो सुन नहीं सकते ना, तो फिर जो खिलाफ बात करे उसको वैसे ही उड़ा देते हैं। सहाबी ने कहा, तो फिर हम क्या करें या रसूलुल्लाह? फरमाया, वो ही करो जो ईसा अलैहि सलाम के साथियों ने किया था। वो लोग आरों से चीर दिए गए, सूलियों पर लटकाए गए। अल्लाह की नाफरमानी में जिंदा रहने से बदरजा बेहतर है कि आदमी अल्लाह के अहकाम की पैरवी करते हुए जान दे। आज हुक्मरान तो किसी के लिए नहीं खड़े हुए कि हमें ऐसे कर रहे हैं, हम खुद अपनी ख्वाहिशात के ऐसे बंदे बन चुके हैं कि हम तो खुद दीन पे चलना नहीं चाहते। किसी ने हमें क्या रोकना है, हम खुद दीन पे नहीं चलना चाहते। हमारी खुद ख्वाहिशात इतनी बड़ी हो गई कि उनको खुदा बना लिया, दीन तो कहीं पीछे रह जाता है। इन इज्तमाई अमराज के खिलाफ बराबर जिहाद करते रहिए, जिनके नतीजे में सोसाइटी पर खौफ और दहशत की घटाएं छा जाती है। इफलास, कहत, खून रेजी आम हो जाती है, और दुश्मनों के जालिमाना तसल्लुत में कौम बेबस होकर रह जाती है। ये भी एक जिहाद है, आपको पता है, कि बुराई के खिलाफ इंसान खड़ा हो जाए कि मैं इस बुराई को नहीं कबूल करना, चाहे वो हमारे खानदान में, हमारी सोसाइटीज में, हमारे रिवाज हैं। लेकिन ये भी एक जिहाद है कि आप कहें कि नहीं, ये हम नहीं करेंगे, हम इसमें शामिल नहीं होंगे। अब्दुल्लाह ने अब्बास फरमाते, जिस कौम में खयानत का बाजार गर्म हो जाए, अल्लाह उस कौम के दिलों में दुश्मन का खौफ और दहशत बिठा देता, और जिस माशरे में जिना की वबा आम हो जाए वो फना के घाट उतर कर रहेगा, और जिस सोसाइटी में नाप तोल में बददियानती का रिवाज हो जाए वो जरूर कहत और फाके का शिकार होगी, और जहां नाहक फैसले हो वहां लाजमन खून रेजी आम होगी, और जो कौम भी बदअहदी करेगी उस पर बहर हाल दुश्मन का तसल्लुत होकर रहेगा। देखिए, ये बुराइयां वैसे तो वो हैं जो गुनाह है, जिना है, नाप तोल में कमी बेशी है, या कत्लो गारत है, ये या खयानत है, ये सारे गुनाह के काम है। लेकिन आप देख लें कि उससे दुनिया में भी इंसान की जिंदगी कितनी मुश्किल हो जाती है, जब कत्लो गारत आम हो जाए, वबाएं फैलना शुरू हो जाए, कहत साली हो जाए, चीजों की प्राइसेस इतनी ऊपर हो जाएंगे कि किसी की अफोर्ड से बाहर हो जाए, तो ये दुनिया की सजा है। दुनिया में भी सजा मिलती है, आखिरत में तो होती ही है, और इज्तमाही तौर पे मिलती है, पूरी सोसाइटी को मिलती है। इसलिए कि सब उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं ना ऐसी चीजों को। जब दुश्मनों की जानिब से खौफ लाहक हो तो ये दुआ पढ़िए, अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नाऊजु बिका मिन शुरूरिहिम। अल्लाह ताला, हम इन दुश्मनों के मुकाबले में तुझे ही अपनी सपर बनाते हैं, और इनके शर और फसाद से बचने के लिए तेरी पनाह में आते हैं। यानी अल्लाह ताला, हम तुझे आगे करते हैं, इनके इन दुश्मनों के आगे तुझे करते हैं। और जब दुश्मन के नरगे में फंसे हुए हों तो ये दुआ पढ़िए, अल्लाहुम्मा अस्तुर औरातिना व आमिर रौआतिना। ए अल्लाह, हमारी इज्जत और आबरू की हिफाजत कर और खौफ व हरास से अमन अता फरमा। जब आंधी या घटा उठती देखें तो घबराहट और खौफ महसूस करें। यानी इंसान को ये होना चाहिए हमारे अंदर, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यही करते थे कि जब आंधी तूफान या इस तरह की चीज़ देखते थे, बादल उठते थे, तो खौफ महसूस करते थे कि पता नहीं इसमें अजाब तो नहीं है। आयशा रज़ी अल्लाह तआला फरमाती हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह कहकह लगाते हुए नहीं देखा कि आपका पूरा मुंह खुल जाए, हाँ 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 करके हंसना जो है ना, इस तरह नहीं, क्योंकि ये बेखौफी की अलामत है ना कि इंसान के अंदर खौफ नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुस्कुराते थे, और जब कभी आंधी या घटा आती तो आप घबरा जाते और दुआ करने लगते, खौफ की वजह से कभी उठते कभी बैठते, और जब तक पानी ना बरस जाता आपकी यही हालत रहती। तो मैंने पूछा, या रसूलुल्लाह, मैं लोगों को देखती हूँ जब बदली देखते हैं तो खुश होते हैं, तो आपके पानी बरसेगा और आपको देखती हूँ आप बादल देखते हैं तो आपके चेहरे पर गरानी और परेशानी दिखाई देने लगी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा, आखिर मैं कैसे बेखौफ हो जाऊँ कि इस बादल में ये ना हो कि अजाब हो। जबकि कौमे आद पर आंधी का अजाब आ चुका है। कौमे आद ने भी जब इस बादल को देखा था तो उन्होंने कहा था ये बादल हम पर पानी बरसाएगा। तो बुखारी मुस्लिम की ये रिवायत है, ये दुआ पढ़ने की यानी ऐसे वक्त में है, अल्लाहुम्मा जअलहा रियाहन वला तजअलहा रीहन, अल्लाहुम्मा जअलहा रहमतन वला तजअलहा अदाबन, कि अल्लाह इस आंधी को हमारे लिए अजाब का बायस ना बनाना, इसको हमारे लिए रहमत का बायस बनाना, और अगर आंधी के साथ सख्त अंधेरा भी हो तो कुल औज़ु रब्बिल फलक और कुल औज़ु रब्बिन नास भी पढ़िए। और आयशा रजी अल्लाह तआला फरमाती हैं कि जब आंधी उठती थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा इन्ना अस्अलुका खैरहा व खैरा मा फीहा व खैरा मा उरसिलत बिही व अऊज़ु बिका मिन शर्रिहा व शर्रि मा फीहा व शर्रि मा उरसिलत बिही। अल्लाह मैं तुझसे इस आंधी की खैर और जो इसमें है उसकी खैर चाहता हूँ, और जो इसके अंदर शर है उससे पनाह मांगता हूँ। और जिस घर से ये भेजी गई है, जब बारिश की ज्यादती से तबाही का अंदेशा हो, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ पढ़ी जो बुखारी और मुस्लिम में है, कि अल्लाह हमारे आस पास में इसको बरसा दे और हमसे दूर कर दे, और हमारे खेतों में और पहाड़ों में और वादियों में वहां पे इसको बरसा। और जब बादलों की गरज और बिजली की चमक कड़क सुने तो बातचीत बंद करके कुरान पाक की आयत पढ़ना शुरू कर दे, वह युसब्बिहुर रअदु बिहम्दिही वल मलाइकतु मिन खीफतिही, और बादलों की गरज भी अल्लाह की तस्बीह बयान करती है और फरिश्ते भी उसके खौफ से लरजते और पाकी और बरतरी बयान करते हैं। अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर जब बादलों की गरज सुनते तो बातचीत बंद कर देते और यही आयत पढ़ने लगते। हजरत काफ फरमाते हैं, जो शख्स गरज के बाद 3 मरतबा इस आयत को पढ़ लेगा तो वो गरज की आफत से आफियत में रहेगा। बाज लोग बहुत डर जाते हैं, बच्चे भी डर जाते हैं जब गरज बहुत ज्यादा होती, तो ये आयत पढ़नी चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बादलों की गरज और बिजली की कड़क सुनते तो ये दुआ पढ़ते, अल्लाहुम्मा ला तक्तुलना बि गदबिका वला तुहलिकना बि अदाबिका व आफिना क़बला दालिक, ए अल्लाह हमें अपने गजब से हलाक ना कर, अपने अजाब से हमें तबाह ना कर, और ऐसा वक्त आने से पहले हमें अपनी आफियत में ले लेना। जब आग लग जाए तो उसको बुझाने की भरपूर कोशिश के साथ साथ अल्लाह अकबर भी कहते जाइए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि जब आग लगती देखो तो अल्लाह अकबर कहो, तकबीर आग को बुझा देती है। खौफ और दहशत के गलबे में ये दुआ पढ़िए कि खुदा ने चाहा तो दहशत दूर होगी और इत्मीनान नसीब होगा। बर्रा बिन आजिब रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि एक शख्स ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की कि मुझ पर दहशत तारी रहती है, आपने फरमाया ये दुआ पढ़ा करो, उसने इस दुआ का विर्द किया, अल्लाह ताला ने उसके दिल से दहशत दूर फरमा दी। यानी एक होती ना कि किसी की दहशत भी तारी हो जाना दिल के ऊपर और खौफ तारी हो जाना, तो उस वक्त में मौजम तबरानी में यह है, सुभान अल्लाहिल मलिक अल कुद्दूस रब्बल मलाइकति वर रूही जल्लता समावात वल अर्दा बिल इज्जति वल जबरूत, के पाक और बरतर है अल्लाह जो बादशाही हकीकी है, ऐबों से पाक है, और ए फरिश्तों और फरिश्तों और जिब्राइल के परवरदिगार तेरे इकतदार और दबदबा आसमानों और ज़मीन पर छाया हुआ है। तो ये भी लिख के आप रख सकते हैं। इस तरह आग लगने के ऊपर जो दुआ है और इसी तरह आंधी के वक्त की दुआ, और ये सब अगर लिख के कहीं रखी हूँ तो इंसान के लिए आसानी है कि उस वक्त आप पढ़ सकते हैं। आजकल तो फ़ोन के ऊपर भी बहुत दफ़ा हमें मिल जाती हैं ये दुआएं, तो उस वक्त ये दुआएं पढ़नी चाहिए साथ साथ तदबीर के, और इंसान को इस चीज़ को जहन में रखना चाहिए कि पता नहीं ये कोई अजाब ना हो जो हमारी तरफ आ रहा हो, और तौबा इस्तगफार तो हर वक्त ही करते रहना है। सुभानकल्लाहुम्मा वबिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।